मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज है 8 सितंबर 2016 और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन साथी का नाम है आदिल चिश्ती क्वाद्री जो न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आदिल आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों अब हम आते हैं कल के AIR न्यूज पर। न्यूज तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। देखिए मैं जानबूझकर दोस्तों आप लोगों से हर बार ये लगभग कह डालता हूं कि न्यूज तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप में से हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट मेरे डेली ऑडियो गाइडेंस को डेली सुनते हों, और ये भी हो सकता है कि उनके दिमाग में ये गलत धारणा बन गई हो कि चूंकि डेली ऑडियो गाइडेंस में जो न्यूज की इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं और उन न्यूज की जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो तो सब आ ही जाता है, तो रेडियो न्यूज सुनने से क्या फायदा, उसको ना सुना जाए, क्यों हम 15 मिनट और उसमें लगाएं। मित्रों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं। देखिए जो रेडियो न्यूज की जो अपनी वक्त है, जो वेटेज है, जो कम्प्रहेंसिवनेस है, उसका जो विस्तार है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और ज्यादा अच्छा होगा कि आप रेडियो न्यूज सुनने के बाद डेली ऑडियो गाइडेंस को सुने, ये भी आपके नियम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि तभी आप मेरे डेली ऑडियो गाइडेंस को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, या यूं कह लीजिए कि मेरे साथ सही मायने में न्याय कर सकेंगे। और मेरे साथ न्याय करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं खुद के साथ ही न्याय करना। तो रेडियो न्यूज आपको सुननी ही सुननी है। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी चर्चा मैं यहां नहीं कर पाता हूं, लेकिन भले ही वो सिविल सर्विस के दृष्टि से इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आप और भी तो एग्जाम देंगे, उनके लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए मित्रों मैं अक्सर ये यूं कह लीजिए कि मैं रोजाना लगभग आप लोगों को याद दिला ही देता हूं कि उम्मीद है कि आप सबने न्यूज सुनी ही होगी। मित्रों न्यूज आपको सुनना ही है। डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में आप अपनी तरफ से फैसला लेने को स्वतंत्र हैं, लेकिन डेली न्यूज के बारे में आप अपनी तरफ से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मित्रों कल के रेडियो न्यूज में जो 3-4 चीजें थी मैं उधर केवल आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगा, फिर मैं आज जिस बात पर जोर दूंगा, जिस टॉपिक पर, जिसको थोड़ा सा मैं विस्तार से बताऊंगा, वो खासकर अभी कावेरी जल को लेकर के जो कर्नाटक और तमिलनाडु की स्थिति है उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मित्रों पहली न्यूज तो आपने सुनी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी लाओस की राजधानी पहुंच गए हैं, जहां एशियन देशों की शिखर सम्मेलन हो ही रहा है। इस पर हम लोगों ने कल चर्चा की है, और साथ ही वहां पूर्वी एशिया देश भी वहां हैं और उनके बीच भी शिखर सम्मेलन होगा। मित्रों कल के न्यूज में आपको एक नया शब्द मिला, पूर्वी एशिया। तो फिर से आपके लिए एक मौका है, जबकि आप पूर्वी एशियन कंट्रीज को देखें, जब आप एटलस में जाएंगे तो आपको पूर्वी एशिया के देश अलग से मिल जाएंगे। हम लोगों के समय में जब मैं सिविल सर्विस में अपीयर हो रहा था, तो मैंने तो मेंस में प्री में भी हिस्ट्री लिया था, मेंस में भी हिस्ट्री लिया था, तो एक वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम लोगों को पढ़नी होती थी, अभी भी पढ़नी पड़ती है। उसमें एक अलग से सेक्शन हुआ करता था वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर फार ईस्ट एशिया का मतलब सुदूर पूर्व एशिया, उसका नाम होता था सुदूर पूर्व एशिया। अब फार ईस्ट एशिया न कह करके अब शायद वो पूर्वी एशिया कहा जाता हो, फार ईस्ट एशिया प्रचलन में न रह गया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस सुदूर पूर्व एशिया के अंतर्गत हम लोग चीन, जापान, इन सब का इतिहास पढ़ते थे। तो आपने देखा कि पूर्वी एशिया का शिखर बैठक भी हो रही है, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी जापान के प्रधानमंत्री से मिले, और जापान के प्रधानमंत्री से यूं मानकर चलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बड़े व्यक्तिगत संबंध भी हैं, और ये तब से हैं जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो जिन इश्यूज पर बात हुए हैं दोस्तों, अब तक मुझे लगता है कि आप में इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के किसी भी देश से, और अगर वो बहुत महत्वपूर्ण देश है, टेक्नोलॉजिकली बहुत डेवलप्ड है, इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड है, तो किन इश्यूज पर बात करेंगे। अभी तक आपको इतनी मैच्योरिटी तो आ ही गई होगी, मेरे कम से कम मेरे डेली ऑडियो को सुनते सुनते और रेडियो सुनते सुनते। वही आतंकवाद अभी सबसे बड़ा मुद्दा है, डेफिनेटली उस पर बात होती है। भारत के लिए अभी ग्रीन एनर्जी सबसे बड़ी जरूरत है, तो आपने देखा कि उसके बारे में बात होती है। भारत को अभी टेक्नोलॉजी चाहिए और विदेशी निवेश चाहिए, उसके लिए बात होती है। तो ये सिक्योरिटी पर बात होती है जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, यूं कह लीजिए। तो आपने देखा कि इन्हीं मुद्दों पर लगभग लगभग जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी बात हुई है। हाँ, किसी देश विशेष की अगर कोई विशिष्टता है, कोई अतिरिक्त उपलब्धि होती है, तो उनके बारे में फिर अलग से बात हो जाती है और वो चीज हाईलाइट भी हो जाती है। तो मित्रों, ये प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं कि शिखर सम्मेलन में क्या उभर कर आता है, और डेफिनेटली वह एक इम्पॉर्टेंट तथ्य होगा जो आप सबको भी जानना चाहिए। मित्रों, जो दूसरी इम्पॉर्टेंट खबर थी, उस हालांकि उस रूप में वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके जरिए मैं आप लोगों से कुछ चीजें बताना चाहूंगा। यह पाकिस्तान के राजदूत को बुलाने से संबंधित है। देखा आपने कि भारत में जो पाकिस्तान के राजदूत हैं, राजदूत नहीं कहना चाहिए बल्कि हाई कमिश्नर कहना चाहिए, उच्चायुक्त। मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन नए श्रोता जुड़ गए होंगे तो मैं बताना चाहूंगा कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, जो राष्ट्रमंडल देश के जो सदस्य हैं, उन देशों के एक दूसरे के यहां जो एम्बेसडर अपॉइंट होते हैं, उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है। इंग्लिश में हाई कमिश्नर और हिंदी में उच्चायुक्त कहते हैं, मतलब हैं वो एम्बेसडर ही, लेकिन डेजिग्नेशन हाई कमिश्नर का होता है। तो आपने देखा कि भारत में जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं, उनको बुला करके, और भारत ने अपना एक विरोध दर्ज किया है, और खासकर ये विरोध इस रूप में दर्ज किया कि पाकिस्तान में हमारे जो हाई कमिश्नर हैं, उनको एक प्रोग्राम में बुलाया गया था, और आधे घंटे पहले बिना कारण बताए उस प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया। इसको लेकर के दोस्तों, ये बात आपको वैसे सामान्य सी लग सकती है कि भाई ठीक है, प्रोग्राम रद्द कर दिया गया तो क्या बात हो गई कि उनके राजदूत को यहां बुलाया जाए और ये सब किया जाए। मैं यहां थोड़ी सी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। हो सकता है कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो और आप इंडियन फॉरेन सर्विस में ही आ जाएं, और आप किसी दिन हाई कमिश्नर या एम्बेसडर बनकर जाएंगे ही, फिर अगर इंडियन फॉरेन सर्विस में आ जाएंगे तो ये पद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मित्रों, जो राजदूत होते हैं, चाहे हमारे देश के किसी भी देश में राजदूत हो या दूसरे देशों के हमारे देश में राजदूत हो, जो हमारे एम्बेसडर होते हैं, याद रखिए कि उस देश में वो हमारे राष्ट्र का चूंकि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री की तरह माने जाते हैं। मतलब उनकी जो प्रतिष्ठा होती है राजदूत की, ठीक उसी तरह की होती है जैसे कि हमारे राष्ट्रपति जी की प्रतिष्ठा हो। हालांकि उस रूप में हम पैरेलल नहीं कह सकते कि हमारे राष्ट्रपति जी जाएंगे तो उनको वही सम्मान मिलेगा जो हमारे राजदूत जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनको उसी तरह की प्रतिष्ठा मिलती है। और आप देखेंगे कि जो राजदूत की गाड़ी अगर आपको कहीं देखने को मिली हो, खासकर दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत सी ऐसी गाड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी, तो उनका जो गाड़ी का जो नंबर प्लेट होती है, एक तो आपको ब्लू कलर की मिलेगी, और बाकी ब्लू कलर को यूज नहीं कर सकते, वो इंटरनेशनल अथॉरिटीज के लिए है, समझ लीजिए राजदूतों के लिए है। और दूसरा, उनके नंबर डिफरेंट होते हैं, ये वाले नंबर नहीं होते। इसका मतलब है कि वो जो गाड़ी है वो राजदूत की है या यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है, और उनकी गाड़ी की चेकिंग उस तरीके से नहीं की जा सकती जिस तरीके से किसी की भी चेकिंग कर ली जाती है। पता लगा आरटीओ वाला रोक करके कह रहा है कि लाइसेंस दिखाओ, उनको बहुत विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं क्योंकि वो अपने राष्ट्र के प्रथम व्यक्ति का, प्रथम नागरिक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनको बहुत से मामलों में छूट मिली रहती है। अगर वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनको उसी रास्ते से नहीं गुजरना पड़ता जिस रास्ते से आम लोग बाहर आते हैं, उनके लिए एक अलग से ग्रीन चैनल होता है जिसमें वीवीआईपीज गुजरते हैं और भी बहुत से लोग गुजरते हैं, तो यह प्रतिष्ठा राजदूत की होती है। स्वाभाविक रूप से है कि अगर हमारे हाई कमिश्नर को उन्होंने इस तरीके से आधे घंटे पहले कैंसिल की सूचना दी, तो ये राजदूत हमारे हाई कमिश्नर के माध्यम से ये राष्ट्र का अपमान है। तो जब राष्ट्र के अपमान की ऐसी स्थिति होगी तो स्वाभाविक तौर पर उसके प्रति विरोध प्रकट किया जाएगा और वहां के फिर हाई कमिश्नर को बुला करके हमारे राष्ट्र ने विरोध प्रकट कर दिया है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि भी है जो अक्सर आपको बीच बीच में पढ़ने को मिल जाएंगी, लेकिन ये अच्छे सेंस में, अच्छे टेस्ट में नहीं होता है। दो राष्ट्रों के बीच के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए ये उल्टा काम करता है। तो मैंने सोचा कि जो प्रोटोकॉल की बात होती है वो मैं आपको बता दूं। और मित्रों, जो तीसरी खबर थी वो पैरालंपिक गेम्स। आपको मालूम है कि रियो द जेनेरियो में ब्राजील का ही एक नगर है जहां भी ओलंपिक गेम हुए थे, वहीं शुरू हो गया है और भारत ने वहां भी अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है। प्रधानमंत्री जी ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, गला खराब हो गया है, वो कुछ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, माफी चाहूंगा। इसके बाद न्यूज में जो जो लास्ट सी खबर थी जिसको लेकर के अब मैं विस्तार से थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। मित्रों, आपने सुना कि जो पब्लिक स्पीक का जो विषय है वो कावेरी जल विवाद है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने आपको बताया था कि इस पर हम थोड़े से विस्तार से बात करेंगे तुलनात्मक रूप से। मित्रों, चूंकि कावेरी, एक तो कावेरी नदी जल विवाद है, तो आपको चाहिए कि आप कावेरी नदी को एटलस पर देखें, कहां से निकलती है, किन रास्तों से होती हुई कहां समाप्त होती है, किन किन राज्यों के बीच से वह गुजरती है। ये मानकर चलिए कि मैं डेली लगभग ऑलमोस्ट, रोजाना तो नहीं, लेकिन ये जो एटलस वाली जो तकलीफ है आप लोगों को दिया करूंगा, बिना इस बात की परवाह किए कि आप लोग मुझ पर नाराज होते हैं या खुश होते हैं। अगर आप लोगों की नाराजगी से आप, मतलब मेरे प्रति आप लोगों की नाराजगी से अगर आप लोगों का हित सद रहा हो, तो मैं एक दिन में कई कई बार नाराज होने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जिस दिन आप सफल हो जाएंगे मैं उसी दिन खुश होऊंगा। आपकी नाराजगी से मैं नाराज नहीं होऊंगा, आपकी सफलता से मैं खुश जरूर हो जाऊंगा। तो मित्रों, ये तकलीफ मैं आपको दूंगा और जो इस तकलीफ को उठाने के लिए तैयार होंगे, मैं समझता हूं कि मुझे उनके मुंह से उनकी सफलता की खबरें सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो मित्रों, आप एटलस में कावेरी नदी के पूरे जो उसका जो क्षेत्र है उसको एक बार देखें, तो आपको एक तो पता लग जाएगा कि यह नदी क्या है, कहां के गुजरती है, कैसे क्या होता है, तभी आप इससे संबंधित विवाद को भी समझ पाएंगे ना। विवाद किनके बीच में होगा? जो कावेरी से 500 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं वो झगड़ा थोड़ी करेंगे कावेरी नदी से, मतलब स्टेट वाले कर सकते हैं, लेकिन जिस स्टेट से उसका कुछ लेना देना नहीं है वो थोड़ी झगड़ा करेगा। तो आपको फिर पता लग जाएगा जैसे ही है कि कौन कौन राज्य इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आपको अभी कर्नाटक और तमिलनाडु की घटना तो आप सुनी रहे, तो ये दो राज्य तो होंगे ही होंगे। आप देखिए कि और दूसरे कौन से राज्य हो सकते हैं, मैं अभी नहीं बता रहा हूं। दोस्तों, एक बात और, मैं आप लोगों को अक्सर इससे पहले 3 साल 2013 से अभी का पैटर्न चालू हुआ है मेंस का, कभी कभी आपने देखा है कि मैं किसी पर्टिकुलर ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पढ़कर सुनाता हूं, है ना। ये जबरदस्ती मैं टाइम पास नहीं करता हूं इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास आप लोगों से बात करने के लिए इतना ज्यादा होता है कि आप देखिए कि मैं तो इतनी तेजी तेजी से बोलने के चक्कर में मिस कर जाता हूं अगस्त का, सितंबर से कुछ इस तरह की गड़बड़ियां हो जाती हैं, क्योंकि मैं तो लिखा हुआ तो बोलता नहीं, पढ़ता नहीं हूं, दिमाग में रखा हुआ बोलता हूं, उसमें टंग स्लिप हो जाती है। क्योंकि कम समय में लगता है कि आप लोगों से ज्यादा बातें कर लूं, वो मेरा लालच होता है, तो कभी गड़बड़ी भी कर बैठता हूं, लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ा सतर्क डेफिनेटली रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरी बातों पर यकीन करते हैं, तो मुझे आप लोगों के उस यकीन को बचाए रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और वह कोशिश मैंने अभी स्पेशली करनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, मैं जो क्वेश्चंस आपको पढ़कर सुनाता हूं उसके पीछे उद्देश्य यह होता है कि आप अपने अंदर यह क्षमता पैदा कर सकें कि किस तरीके से इस साल के लिए या अगले साल के लिए, आने वाले किसी भी साल के लिए आप अपनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। कैसे सिलेक्ट करेंगे कि इस टॉपिक पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिए, सभी टॉपिक पर आप समान रूप से तैयारी नहीं कर सकते और मुझे लगता है कि यह सही रणनीति भी नहीं है। आपको कुछ टॉपिक सेलेक्ट करने होते हैं, उन पर बहुत अच्छी तैयारी करनी होती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर आप एक मिडिल लेवल की तैयारी करते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका आपको आभास भर होता है। जब परीक्षा में आते हैं तो आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए अपने अनुभव और ऑब्जर्वेशंस के आधार पर उनके उत्तर लिखकर आ जाते हैं। और इस तरीके से कोशिश होनी चाहिए कि 20 में से एटलीस्ट 18 क्वेश्चंस तो आप कुछ न कुछ लिख करके आ ही जाए। तो दोस्तों, आपके अंदर वो कैपेसिटी पैदा हो सके, इसलिए मैं उन प्रश्नों को उन प्रश्नों की याद दिलाता हूं और पूरी तरह से पढ़कर सुनाता भी हूं। पढ़कर मैं इसलिए सुनाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन का नेचर पता लग सके, उसका करेक्टर पता लग सके कि किसी टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी कावेरी जल विवाद पर मैं कह रहा हूं कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? नो डाउट कि इसका एक रीजन तो यह है ही, क्योंकि इस तरह के टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2013 में पूछा गया है। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ करके सुना रहा हूं, तो आप देखेंगे कि अभी जो कावेरी जल विवाद पर जो अभी मामला चल रहा है, आप देख रहे हैं ना कि तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप, कर्नाटक से कहा है कि आप जल छोड़िए, 15,000 क्यूसेक मीटर में जल पानी जो है ना डेली 10 दिन तक छोड़ते रहिए। और उसको लेकर के कर्नाटक के जो फार्मर्स है, जो ग्रुप है, वो बहुत विरोध कर रहे हैं। सरकार तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो अवहेलना कर ही नहीं सकती, उसने छोड़ना शुरू कर दिया है और कर्नाटक में आंदोलन शुरू हो गए हैं। आप ये न्यूज में आपने सुना भी है और अखबारों में पढ़ा भी होगा। तो मित्रों, एक तो अब आपसे सीधे सीधे क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि दोनों के बीच किस मामले को लेकर के जल विवाद है, इसका क्या समाधान हो सकता है, इसका क्या इतिहास रहा है। इस तरह के प्रश्न अब कम से कम सिविल सर्विस में नहीं पूछे जाएंगे, टॉपिक यही होगा। लेकिन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि जिसमें आपकी अप्रोच पता लग सके कि इस टॉपिक पर एक कंप्लीट अप्रोच आपकी क्या है या कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी क्या है। मैं इसी बात को आपके ध्यान में लाने के लिए क्वेश्चन पढ़कर सुनाता हूं, आप रीजन समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। तो दोस्तों, मैं अब आपको 2013 के जनरल स्टडीज के पेपर 2, जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है, उसका क्वेश्चन पढ़कर सुना रहा हूं जो पूछा गया था 2013 में। देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ देता हूं। अंतर राज्य जल विवादों का समाधान करने में सांविधानिक प्रक्रियाएं समस्याओं को संबोधित करने व हल करने में असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है? विवेचना कीजिए। 200 शब्द हैं मित्रों, 10 नंबर का क्वेश्चन है। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म to resolve the inter-state water disputes have failed to address and solve the problems. Is the failure due to structural or process inadequacy or both? Discuss 200 words. आप देख रहे हैं दोस्तों कि जब यह क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप 2013-12-13 के स्थिति पर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यह प्रश्न क्यों पूछा गया था। उस समय जल विवादों को लेकर के कुछ न्यायाधिकरण ने निर्णय दिए थे और समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उस समय जल विवादों की जो जल से संबंधित जो विवाद थे ज्यादा ही अखबारों में आ रहे थे। अगर आप लोगों में से कोई उस समय सिविल सर्विस की तैयारी करने में जुट गया हो तो याद कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2013 के पेपर में आ गया। अब कर्नाटक और तमिलनाडु पर ये सुप्रीम कोर्ट का ये कोई डिसीजन नहीं है, ये तो 10 दिन के पानी छोड़ने के लिए कहा गया है। ठीक इससे पहले आपने देखा है कि लगभग 4-6 महीने पहले की बात है, 6-1 महीने पहले की बात होगी, पंजाब हरियाणा के बीच में वो नहर को लेकर के, क्या सतलज नहर या कौन सी नहर थी आप चेक कर लीजिएगा, उसको लेकर के एक विवाद की स्थिति बनी थी, तो वो भी वाटर डिस्प्यूट ही था। तो दो घटनाएं तो हो गई, तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए दो घटनाएं सफिशियंट है। तो इस तरीके से इस पर भी कोई सवाल इस तरह का बन सकता है, पूछा जा सकता है, मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई आश्चर्य की बात होगी। तो मित्रों, इसके आधार पर हम ये सेलेक्ट करना पड़ता है कि इनफैक्ट किस तरह के क्वेश्चंस को हम इस साल के लिए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मानकर चलें। इसलिए मैं इस तरीके से आपको चीजें प्रोवाइड करता हूं। मित्रों, जहां तक इस टॉपिक का सवाल है, मैंने बताया कि न्यूज में आपने सुना कि पब्लिक स्पीक का विषय ही है कावेरी जल विवाद। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सब कावेरी जल विवाद पर इस पब्लिक स्पीक को अगर सुनेंगे तो इससे कुछ तो आपकी चीजें क्लियर होंगी, टॉपिक क्लियर होगा, समस्या क्लियर होगी, क्योंकि इस पर डिस्कशन है। तो डिस्कशन में चीजें कई एंगल से उभर कर आती हैं। हो सकता है कि विवाद ज्यादा बढ़े तो जो टीवी चैनल्स हैं ये शायद इसको ले लें, लेकिन अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया है। हिंदी के अखबार अभी तक इस पर अपनी कलम नहीं उठा पाए हैं, लेकिन अंग्रेजी के अखबारों में इस पर काफी आने लगा है। और आज मैं आपको कई एडिटोरियल कमेंट्स आर्टिकल नहीं, इनके प्रोवाइड भी कर रहा हूं। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, शायद हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस भी उसमें शामिल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये सारे अखबार एडिटोरियल में ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। देखिए, एडिटोरियल की बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि वैसे तो लेख लिखे जाते हैं और लेख भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम अगर आर्टिकल और एडिटोरियल को कंपेयर करें तो पक्का जानिए कि उसमें जो एडिटोरियल है वो ज्यादा वजन रखता है, वो ज्यादा मायने रखता है। देखिए, आर्टिकल तो एक राइटर का ओपिनियन है, वजन क्यों रखता है मैं ये आपको बता रहा हूं ताकि इसके भी अंतर को आप समझ करके उसके साथ उस तरह का व्यवहार करें। ये तो एक व्यक्ति की राय है, जिसने लिखा है वो उसकी राय है, लेकिन जो एडिटोरियल है वो पब्लिक की राय है। तो डेमोक्रेसी में, या डेमोक्रेसी न भी हो तो पब्लिक की राय एक व्यक्ति की राय की तुलना में कई गुना ज्यादा मायने रखती है। तो मित्रों, आज मैं आपको कई एडिटोरियल कमेंट कावेरी जल विवाद पर प्रोवाइड कर रहा हूं, आप प्लीज इसको देख लीजिएगा। जहां तक प्रेस क्लिपिंग्स का सवाल है, आज प्रेस क्लिपिंग्स की संख्या भी कुछ ज्यादा ही है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं दोस्तों। एक बिजनेस स्टैंडर्ड की का एक प्रेस क्लिपिंग्स है, खासकर वो न्यायालय को लेकर के, ये आप लोग जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के एक विवाद की स्थिति बन गई है, न केवल सरकार और न्यायालयों के बीच में बल्कि विद इन द न्यायालय भी, कि एक जो जस्टिस है उन्होंने इसके कॉलेजियम में शामिल होने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये जो बनाया गया है, जो रिकमेंडेशन की गई है जजेस के नाम के बारे में, इनमें पर्याप्त पारदर्शिता नहीं है, तो एक डिस्प्यूट की स्थिति आ गई है। तो डेफिनेटली वो फिर एक, चूंकि आप देखेंगे कि जुडिशरी पर हमेशा क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं ऑलमोस्ट, तो और जो डिस्प्यूटेड जो इश्यूज होते हैं क्वेश्चन भी ज्यादातर वहां से आते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, अगर चाहे तो कुछ पॉइंट्स आप दो तीन पॉइंट्स तो एटलीस्ट इसके नोट कर ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, जो दूसरे आर्टिकल्स हैं वो G20 और राजद्रोह मुकदमा और इन सब से ज्यादातर संबंधित आर्टिकल्स हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाता हूं। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के लाइफ मैनेजमेंट पर, समय काफी कम रह गया है लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं और कल की ही बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। मित्रों, हम लोगों का जो दिमाग होता है वो ये मानकर चलिए कि न जाने कितने किस्म के पूर्वाग्रह और दुराग्रहों से ग्रसित होता है। पूर्वाग्रह का मतलब है कि हम पहले से एक धारणा बना चुके होते हैं कि वह व्यक्ति तो ऐसा ही होगा, यह घटना ऐसी ही है। और जब हमारी उससे मुलाकात होती है या जब हम उस घटना के संपर्क में आते हैं तो इनफैक्ट जो रियलिटी है, रियलिटी मतलब वह व्यक्ति जो वास्तव में है या उस घटना की जो सच्चाई है, हम उसको किनारे कर देते हैं और हमारे दिमाग में जो एक इम्प्रेशन बना हुआ है, हम उस इम्प्रेशन के आधार पर ही उस घटना और उस व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन करने लगते हैं। हमारा जो रिएक्शन होगा उस घटना के बारे में, या कह लीजिए कि हमारी जो प्रतिक्रिया होगी वो घटना के आधार पर नहीं होगी, हमारी जो प्रतिक्रिया होगी वह हमारे दिमाग में जो पूर्वाग्रह बना हुआ है, जो बायस्डनेस, या जो बायस्डनेस न भी कह लीजिए, आप यूं कह लीजिए कि जो इमेज हमने बना ली है किसी भी वजह से बन गई है, उसके अनुकूल होगी। व्यक्ति के साथ भी यही होता है। कल मैंने मित्रों ईगो के संदर्भ में बात कही थी कि जब भी कभी डिस्प्यूट जैसी स्थिति आती है, किसी की वजह से हमारे स्वार्थ को या हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तो हमारा ईगो बिल्कुल नाक के फन की तरह फड़फड़ा करके खड़ा हो जाता है और फिर विवेक किनारे हो जाता है। कल मैंने इसकी बात कही थी, आज मैं इसी से रिलेटेड थोड़ी सी दूसरी बात कह रहा हूं जो उसी का एक्सटेंशन है, और वह है पूर्वाग्रह की बात। और ऐसी स्थिति में होता क्या है मित्रों कि उस घटना से जो लर्निंग हमें मिल सकती थी, जो हम सीख सकते थे, या उस व्यक्ति से जो हम अपने संबंध बना सकते थे, उसको बनाने से वंचित हो रह जाते हैं, उस सीखने से वंचित रह जाते हैं। मान लीजिए कि इसका मतलब यह हुआ कि एक घटना जो हमारे लिए बड़ी अच्छी सीख लेकर आई थी, एक बड़ी खूबसूरत किताब की तरह थी, पुस्तिका की तरह थी, उसको हमने नष्ट हो जाने दिया और अपनी जिंदगी को एक जो भर सकती थी, हमारी जिंदगी समृद्ध हो सकती थी, उसको उस आप कह लीजिए कि धन से, उस ऐश्वर्य से वंचित कर दिया। दोस्तों, लर्निंग के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके हाथ में जो स्लेट है जिस पर आप लिखेंगे वो कितनी क्लीन है, कितनी साफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से ही उस पर कुछ लिखा हुआ है। पहले से ही कुछ लिखा हुआ है का मतलब ही है पूर्वाग्रह, दुराग्रह। फिर तो उस पर कुछ नया लिखा ही नहीं जा सकता। दोस्तों, ये बात खासकर मैं अपने फिफ्थ बैच के इस आने वाले स्टूडेंट्स को विशेष रूप से ध्यान में रख करके कह रहा हूं, और नो डाउट अपने उन सभी प्रिय श्रोताओं को भी ध्यान में रख करके कह रहा हूं जो मेरे डेली ऑडियो गाइडेंस को प्यार करते हैं और उनको लगता है कि इस डेली ऑडियो गाइडेंस से, चाहे फिर वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हों या एक बेहतर जीवन जीने की आकांक्षा कर रहे हों, कुछ सीख सकते हैं। लेकिन सीखना तो मित्रों तभी संभव होगा जब आपके हाथ की स्लेट बिल्कुल क्लीन हो, बिल्कुल कोरी हो, एकदम नई हो। और मित्रों, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है। मतलब हो सकता है कि दिक्कत हो रही, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं होती है। मैं अपने को बिल्कुल किनारे कर देता हूं, और खासकर मैं उन लोगों की किताबें पढ़ना, उन लोगों के विचार सुनना ज्यादा पसंद करता हूं जिनके बारे में मैं जानता हूं कि इनके विचार मेरे विचार से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे दिमाग को वही तो चुनौती दे पाएंगे। और तभी तो मेरे दिमाग में जो मेरी विचारधारा है, बनी हुई है, या जो पूर्वाग्रह बन गया है, उसको एक चुनौती मिलेगी, उसको कोई ललकारेगा। और जब कोई ललकारेगा तब मैं उसका जवाब दूंगा। देखता हूं मैं जवाब देने की स्थिति में हूं कि नहीं हूं, मतलब मेरे दिमाग की एक मुठभेड़ होगी, और उस जवाब देने में या तो मैं अच्छे से जवाब दे पाऊंगा, और अगर जवाब नहीं दे पाया तो मैं समर्पण करूंगा उसके सामने, और समर्पण करके उसे स्वीकार करूंगा। समर्पण का मतलब ही होता है उसे स्वीकार करना। और इस तरीके से मेरा दिमाग जो एक किसी चीज के गुलामी कर रहा था, एक बंधन में आ गया था जिसमें नएपन की गुंजाइश खत्म हो गई थी, उसमें एक नई सांस आएगी, उसमें एक ताजगी आएगी, उसमें एक नई सुगंध आएगी। और जब तक मेरा दिमाग नई ताजगी और नई सुगंध लेता रहेगा, मित्रों उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, मैं बूढ़ा नहीं हो सकता। और जो बात मेरे लिए सही है वो आप सब के लिए सही है, और जो ग्रोथ जिसको कहते हैं, जो विकास का जो सिद्धांत होता है या विकास की जो प्रक्रिया होती है, विकास का जो सूत्र होता है, मुझे लगता है कि मित्रों यही वह सूत्र है। तो दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में इतना ही। अब मैं आता हूं जो ईमेल आए हैं उस चरण पर, तो ईमेल लिखने वाले अपने सभी मित्रों के प्रति मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। और दोस्तों जैसा कि मैंने कल आप लोगों को सूचित किया था कि फिफ्थ बैच के जो स्टूडेंट आ रहे हैं, यदि वो अपने क्षेत्र में आने वाले स्टूडेंट्स को अपना नंबर बताना चाह रहे हैं तो वो हमें सूचित कर दें। मैं डेली ऑडियो गाइडेंस में उनके फोन नंबर, नाम वगैरह की घोषणा करूंगा। तो इस तरह के चार नाम मुझे मिले हैं, तो मैं उन नामों की घोषणा करना चाह रहा हूं जो पांचवें बैच के रूप में भोपाल पहुंच रहे हैं। उसमें पहला नाम है दोस्तों हंस राज तेली का, जो बूंदी से आ रहे हैं, राजस्थान से। उन्होंने कहा है कि बूंदी, कोटा, बारान और झालवाड़ और सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों से जो भी स्टूडेंट आ रहे हों वो हंसराज से कांटेक्ट कर सकते हैं। हंसराज का मोबाइल नंबर है 9549544466। नेक्स्ट स्टूडेंट है मित्रों तरुण कुमार, जो न्यू दिल्ली से आ रहे हैं। तरुण कुमार का मोबाइल नंबर है 9917818400। नेक्स्ट स्टूडेंट हैं गौरव कुमार भारद्वाज, जो वैद्यनाथ धाम से आ रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर है 8409344913। अभी मैंने जिनका मोबाइल नंबर बताया है उनका नाम है गौरव कुमार भारद्वाज। और फोर्थ एंड लास्ट स्टूडेंट है मित्रों मोहम्मद तौसीफ आलम, जो पटना से आ रहे हैं। तौसीफ आलम का नंबर है 9409896683। तो मित्रों जो भी इनसे संपर्क करना चाहते हैं मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों अब मैं नाम ले रहा हूं कुछ ईमेल लिखने वाले दोस्तों का। उसमें एक मेल आया है अच्छे लाल चौहान का, जो उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने लिखा है कि लगभग काफी लोगों को, खासकर इन्होंने डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में बताया है और इन्हें अच्छा रिस्पांस मिला है, तो अच्छे लाल इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ दोस्तों के नाम हैं अंकित कुमार जो बछवाड़ा बिहार से हैं, रजनी शर्मा, अधिकरण महतो, संजीव कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, शिवांगी पांडे सालेमपुर उत्तर प्रदेश से, अभिनव कुमार भागलपुर से, सरोज कुमार महतो, सत्येंद्र सिंह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, प्रांजलि राय और साहिल कृष्ण जम्मू से। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।